ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं। वो सालों पहले मुझे छोड़कर चली गई थी। आरवी के शब्द सुनकर शान अचंभित सा उसको देखते हुए बोला, आरवी तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? आरवी अपनी रियल माँ की बात कर रही थी, जिनके बारे में शान को कुछ पता ही नहीं था। वो तो अनुपमा जी के बारे में सोच रहा था, और इसलिए आरवी की बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थीं। आरवी ने रोते हुए आगे बताना शुरू किया, मैं माँ के पास गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो ये हैं। मुझे जन्म देने वाली माँ अब इस दुनिया में नहीं। मैं माँ पापा की बेटी नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने बस मुझे पाला है। माँ ने आज मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ की तस्वीर दिखाई थी। बालकनी में खड़ी होकर उस फोटो को देख रही थी, पर पता नहीं कैसे मेरे हाथ से वो फोटो छूटकर नीचे गिर गई। मुझे माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस एक यही फोटो थी। पर मैं उनकी इस आखिरी निशानी को भी संभाल कर नहीं रख सकी। मैंने उनकी तस्वीर को भी खो दिया। मैं अब कभी उन्हें देख नहीं सकूंगी। आरवी बुरी तरह रो पड़ी। उसकी बताई बातें शान के लिए किसी शौक से कम नहीं था, पर इस वक्त उसको आरवी को संभालना था, इसलिए उसने खुद को सहज बनाए रखा और उसके हाथ से उस फोटो को ले लिया। मुझे तस्वीर दिखाओ, शायद मैं कोई रास्ता निकाल सकूं। आरवी ने अब बिना कुछ कहे उस फोटो को उसको दे दिया। शान ने उस फोटो को देखा, जो कीचड़ के वजह से गंदी हो गई थी। ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। अंदर मौजूद औरत की हल्की सी झलक ही दिख रही थी, जिससे उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल था। पर जितनी भी वो तस्वीर नजर आ रही थी, उसमें आरवी की झलक आ रही थी, या शायद किसी और की झलक आ रही थी, पर शान ठीक से पहचान नहीं पा रहा था। उसने उस फोटो को देखते हुए मन ही मन में कहा, ये चेहरा कुछ देखा देखा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें मैंने कहीं तो देखा है, पर फोटो साफ नहीं है, तो पहचान पाना जरा मुश्किल है। शान कुछ पल गौर से उस तस्वीर को देखता रहा, फिर आरवी की तरफ निगाहें उठाई, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। शान ने बाकी बातों को अपने दिमाग में ही रहने दिया और प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, चुप हो जाओ और अब इस प्रॉब्लम को मुझ पर छोड़ दो। मैं इस फोटो को क्लीन करवाकर और वापस फ्रेम करवाकर तुम्हें तुम्हारी माँ की फोटो वापस दे दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अब तुम बिल्कुल नहीं रोगी। शान की बातें सुनकर आरवी को एक उम्मीद सी मिली। उसने आस भरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया, आप सच कह रहे हैं? आप माँ की फोटो को साफ करवाकर मुझे ये फोटो दे देंगे? शान ने हामी भरते हुए कहा, ये मेरे लिए बहुत आसान है, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी माँ की फोटो बिल्कुल सही सलामत वापस मिल जाएगी, बस उसके लिए तुम्हें वादा करना। शान ने इतना कहा ही था कि आरवी ने अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछते हुए उसकी बात काटते हुए बोली, मैं वादा करती हूँ, मैं अब बिल्कुल नहीं रोऊंगी, बस आप मेरी माँ की फोटो साफ करवाकर मुझे लौटा दीजिएगा। उसकी इस अदा पर शान मुस्कुराए बिना न रह सका। उसने फोटो को अपने ब्लेजर के पॉकेट में रख लिया, फिर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, बस कुछ वक्त दो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तस्वीर वापस लौटा दूंगा, वो भी सही सलामत। वैसे आरवी, अगर ये तुम्हारी माँ है तो पापा कौन है? आई मीन टू से कि तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ क्यों छोड़कर गई? तुम्हारे पिता को क्यों नहीं सौंपा तुम्हें? शान ने यूं ही उससे ये सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर आरवी और ज्यादा उदास हो गई और उसने सर झुका लिया। मैंने माँ से ये सवाल किया, पर उन्होंने मुझे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पापा ने माँ को चीट किया था। माँ को जब ये पता चला तो वो उन्हें और उनके घर को छोड़कर चली गई। मम्मी पापा को माँ रात को सड़क पर बैठी मिली थी और मैं उनकी गोद में थी, तब मैं बस 3 साल की ही थी। पापा और मम्मी मेरी माँ और मुझे अपने साथ ले गए। माँ पापा का दिया धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। बहुत इलाज करवाने के बाद भी वो मुझे छोड़कर चली गई। माँ नहीं चाहती थी कि मैं पापा के पास जाऊँ, इसलिए उन्होंने माँ पापा से वचन लिया कि वो मुझे अपने पास अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, और तभी से माँ पापा ने मुझे अपनी बेटी बना लिया। मुझे नहीं पता कि किसका खून है मेरी रगों में, मुझे अपनी असली पहचान भी नहीं पता, पर मैं जानना चाहती हूँ। मुझे मेरे पापा के बारे में जानना है, लेकिन माँ ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा तो कहा कि वही मेरे माँ बाप हैं। मुझे किसने जन्म दिया उस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे जानना है कहाँ है वो और कौन है। अगर जिंदा है तो मेरे पास क्यों नहीं? इतने सालों में मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं मिले मुझसे कभी? क्यों उनके बारे में पूछने पर माँ इतना नाराज हो गई? क्यों उन्होंने मेरी माँ को धोखा दिया? मुझे सब जानना है। आरवी की सिसकियां बन चुकी थी। शान उसकी तकलीफ को समझ रहा था, इसलिए उसने आरवी को अपने सीने से लगा लिया, फिर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, मैं पता लगाता हूँ तुम्हारे पापा के बारे में। श्योरिटी से तो कुछ नहीं कह सकता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी असली पहचान बता सकूं और तुम्हें जन्म देने वाले पिता के बारे में पता लगा सकूं। रोना बंद करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। शान के समझाने पर आरवी कुछ शांत हुई तो शान ने कार घर की तरफ घुमा दी। कुछ ही मिनटों में कार आरवी के घर के सामने रुकी और शान आरवी को अपनी बाहों में उठाए अंदर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला ही था तो वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। वो हॉल में पहुंचा ही था कि अपने कमरे से निकलती अनुपमा जी की नजर उस पर पड़ी। पहले तो वो शान को अचानक यहाँ देखकर हैरान हो गई, पर फिर जैसे ही उनकी नजर आरवी पर पड़ी जिसे उसने अपनी बाहों में उठाया हुआ था, वो परेशान सी हो गई। बेटा आपको क्या हुआ? उनकी चिंता भरी आवाज ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अनुपमा जी घबराई हुई सी उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें सामने देखकर आरवी असहज हो गई और शान की बाहों से आजाद होने के लिए कसमसाते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए ना, माँ देख रही है। शान जिसकी निगाहें अनुपमा जी पर टिकी थी, उसने निगाहें घुमाकर आरवी को देखा जो परेशान सी उसको देख रही थी और उससे बाहों से आजाद होने की कोशिश कर रही थी। आरवी को नीचे उतरने के लिए मचलते देख शान के भाव एकदम से सख्त हो गए और उसने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए कहा, चुप करके शांति से बैठी रहो, एक तो पहले ही अपनी लापरवाही की वजह से अपने पैर को घायल कर लिया है और अब नीचे उतरना चाहती हो ताकि जख्म पर जोर पड़े और जो खून अभी रुका है वो फिर से बहने लगे। शान ने उसको फटकार लगाई। बेचारी आरवी अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकी थी कि अनुपमा जी उन तक पहुंच गईं। अनुपमा जी परेशान निगाहों से शान को देखते हुए बोली, आपका बाय और आपने आरू को ऐसे उठाया हुआ क्यों है? शान ने उनका सवाल सुना तो पहले आरवी को घूर कर देखा जो अब मुंह लटकाए खामोशी से उसकी बाहों में बैठी हुई थी, फिर अनुपमा जी को देखकर सहजता से बोला, चिंता वाली कोई बात नहीं आंटी, आपकी बेटी जरा लापरवाह है। मैंने उसे बताया कि मैं आ रहा था तो बेवकूफों की तरह बिना चप्पल पहने ही बाहर चली गई और सड़क पर पड़ा कांच पैर में लग गया, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, जख्म गहरा नहीं है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, पर अभी जख्म ताजा है, अगर पैर नीचे रखा और जख्म पर जोर पड़ा तो प्रॉब्लम हो सकती है, बस इसलिए मैंने इन्हें उठाया हुआ है। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी चिंतित हो गई और आरवी को घूरते हुए गुस्से से बोली, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? हमें तो आप बहुत समझदार लगती हैं, पर कभी कभी आपकी बचकानी हरकतें हमें दुविधा में डाल देती हैं, पता नहीं आप कब समझदार होंगी और कब अपना ध्यान रखना सीखेंगी।
वो उसको फटकार लगा रही थी और आरवी मुंह लटकाए बैठी थी। शान को तो बड़ा मजा आ रहा था उसको डांट पड़ते देखकर, पर उसकी शक्ल देखकर उसको उस पर दया आ गई और उनसे अनुपमा जी को शांत करते हुए आराम से कहा, आंटी चिंता वाली कोई बात नहीं, आप मुझे फर्स्ट एड बॉक्स ला देंगी, मैं उसकी ड्रेसिंग कर देता, एक दो दिन में जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टू बी कंटिन्यूड।